نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله ہم نے جو کام اپنے سر لیا ہے اس رمضان میں یہ ہمیں بہت اونچے مقامات تک پہنچا سکتا ہے. یہ جو ہم نے اپنے دل کی صفائی کرنی ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مانیں اور ان کی اصلاح کے لیے سیریسلی قدم اٹھائیں. اگر صرف لیکچر ہی سننے سے یہ سب کام ہو جاتا تو پھر تو بہت ہی آسان تھا, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا, یہ اپنا آپریشن خود کرنا ہے, اپنی سرجری کرنی ہے, دل کی صفائی کے لیے کھرچنا ہے چیزوں کو. جو چیز جتنی گندی ہوتی ہے اتنی آپ اس کو دھو دھو کے اور مانج مانج کے صاف کرتے ہیں. تو یہ دل بھی ایسے ہی ہو چکے ہیں. آج جس جان لیوا بیماری کی بات ہم کریں گے, جان لیوا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے اور اس کی نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں آگ جب لکڑی کو جلاتی ہے تو کیا رہ جاتا ہے لکڑی کا؟ کچھ بھی نہیں, وہ راک بن جاتی ہے نا. اسی طرح یہ جو برائی ہے یہ نیکیوں کے پہاڑوں کو بھی, اتنے زیادہ آپ کے پاس نیکیوں کا ڈھیر بھی ہو, سمجھ لیں ان کے نیچے آپ نے چنگاری جلا دی ہے. اب اگر اس چنگاری کو نہ بجھایا تو نیکیوں کا حال کیا ہوگا؟ وہی جو لکڑی کا ہوتا ہے, راکھ بن جائیں گی اور قیامت کے دن سوائے خاک کے کچھ بھی نہیں بچے گا, کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ. تو یہ کون سی خطرناک بیماری ہے جو ہماری اتنی مشکل سے اور محنت سے قریبی نیکیوں کو برباد کر دے؟ اس کو کہتے ہیں حسد, اور آپ نے سنا ہوگا حسد کی آگ. ایسے ہی نہیں کہا جاتا حسد کی آگ, واقعی یہ آگ ہی ہے. اور بعض دفعہ پرابلم یہ ہے کہ انسان کو خود ہی نہیں پتا چلتا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے, اور وہ بیماری اندر ہی اندر اس کی نیکیوں کو کھائے چلی جا رہی ہے. اس وجہ سے یہ بہت خطرناک بیماری ہے. آج ہم اس کی علامات دیکھیں گے, اس کا علاج دیکھیں گے, یہ کیسے کرنا ہے اور یہ ہے کیا. علامت یہ ہے, کیا سمٹم ہے, آپ کو سمٹم سے پتا چلے گا نا اندر بیماری ہے کہ نہیں, کہ دوسرے کے پاس جب نعمت ہوتی ہے یا اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا, دل کہتا ہے یہ نعمت بس اس کے پاس نہ رہے. ضروری نہیں کہ یہ نعمت مجھے ہی مل جائے, لیکن بس اسے نہ ملے, اس سے ضرور چھن جائے. اس کو کیوں مل گئی یہ بات ہضم نہیں ہوتی. اصل میں انسان چاہتا ہے کہ وہ سب سے اوپر جائے, اور جب اس کے ارد گرد والوں میں سے کوئی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے کسی بھی چیز میں, تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے سے آگے کیسے نکل گیا, یا یہ جس مقام پہ تھا اس سے آگے کیسے چلا گیا. تب اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے اور وہ نعمت کا زوال چاہتا ہے دوسرے کے لیے تاکہ یہ اور وہ برابر ہو جائے. یہ علم میں بھی ہو سکتا ہے, دولت میں بھی ہو سکتا ہے, کریئر میں بھی ہو سکتا ہے, اولاد میں بھی ہو سکتا ہے. اور میں بہت دکھ سے کہتی ہوں کہ آج یہ بیماری اتنی کامن ہو چکی ہے, اتنے دلوں کو جلا رہی ہے, جس کو دیکھو وہ دوسرے کی نعمت پہ حسد کرتا نظر آتا ہے, برداشت نہیں ہوتا کہ دوسرے کے پاس یہ نعمت کیوں آئی. پھر وہ نہ اس کی تعریف سننا چاہتا ہے, اور کوئی کر دے تو کہتا ہے ہاں ہاں پتا ہے مجھے, جو ہے یہ مجھے پتا ہے. ہاں اس کا کیا کمال ہے, مطلب اس سے اندر اس کے کچھ ہونے لگتا ہے جہاں دوسرے کی تعریف آئی. تو حاسد کے حسد کی آگ یاد رکھے, سب سے پہلے اس کو خود جلاتی ہے, کسی اور کو تو بعد میں جو بھی ہوگا وہ ہوگا, پہلے وہ خود اندر ہی اندر جلتا ہے. اسی وجہ سے سورہ فلق میں من شر حاسد اذا حسد کہا گیا, کہ حاسد کے حسد سے بھی پناہ مانگو. اور حسد अफसोस से कहना पड़ता है, किसी पराये से नहीं हुआ करता। मसलन अमेरिका का सदर कोई ब्लैक बने वाइट बने, हमें उससे कभी नहीं हसद होगा। बिल गेट्स ज्यादा मालदार हो जाए, हमें कुछ नहीं होगा। मगर मेरी दोस्त को इतनी इज्जत मिल गई, मेरी बहन ने फलां गाड़ी खरीद ली, मेरे भाई को प्रमोशन मिल गई, मेरे देवर ने जबरदस्त घर ले लिया, मेरी दोस्त के बच्चे फलां यूनिवर्सिटी में, उनको एडमिशन मिल गया, मेरी नंद के बच्चे इतने अच्छे निकल आए, इसका शौहर है उसके आगे पीछे फिरता है, इनका कारोबार दिन रात चमक रहा है, और इसको देखो तो अपने घर में राज कर रही है। तो ये बराबर के लोगों में होता है, जब उनको कोई नेमत मिल जाती है। कोई नीचे गिर रहा हो, रुल रहा हो, मसलों में फंस रहा हो, उसकी जिंदगी हेल हो, तो 100 लोग हमदर्दी करने आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अफसोस है कि किसी की तरक्की हो जाए, किसी को कोई नेमत मिल जाए, कोई पहले से बेहतर मकाम पा ले दुनियावी लिहाज से, तो उसमें बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये बात बर्दाश्त होती है। दुख तो यह है कि उस बेचारे को नेमत मिलती है और उसके साथ ही उसके बेशुमार हासिद पैदा हो जाते हैं, और वो हासिद कहीं बाहर से नहीं आते, वो कोई एलियन मखलूक नहीं है, वो हम ही में से होते हैं जो अंदर ही अंदर जल भुन जाते हैं, अपनी नेकियों को भी आग लगा लेते हैं। और अगर आप हसद के पीछे जानना चाहते हैं ना कि क्या माइंडसेट है, तो गौर करें आप, जानते हैं वो क्या है, वो कितना बुरा माइंडसेट है। असल में ये अल्लाह की तकसीम पे राजी ना होना है, ये अल्लाह पे इतराज करना है कि क्यों दिया इसको। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया ना, अम यहसुदून अला मा आताहुमुल्लाह मिन फदली, क्या ये इस चीज पे हसद करते हैं जो अल्लाह ने उनको दिया अपने फजल से, इस चीज के ऊपर उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो जो भी चीज उसको मिली है, चाहे वो कोई कुर्सी है, कोई वजारत है, कोई माल है, कोई इज्जत है, कोई और ओहदा है, घर है, कारोबार है, अच्छी औलाद है, ये बताइए किसने उसको दिए? अल्लाह ने दिए। तो बेसिकली हम नाराज किस बात पे हो रहे हैं कि अल्लाह ने उसको क्यों दिया? हम कौन होते हैं ये क्वेश्चन करने वाले कि अल्लाह ने क्यों दिया? देखिए ना, आपके घर में कोई आके कहे कि आपने ये काम क्यों किया, आप क्यों ये घर में करें, आप कहेंगे मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं, आपको कितना गुस्सा आएगा उस पर। तो जो अल्लाह की तकसीम के ऊपर एतराज करता है, नाराज होता है, तो वो क्या अल्लाह को ये बताना चाहता है कि आपने क्यों ये काम किया, क्यों इसको प्रमोशन दे दी, क्यों इसके बच्चे अच्छे कर दिए, क्यों इसकी शादी अच्छे घर में कर दी, क्यों ये ऐश कर रही है? और यही काम तो यहूद ने किया था कि इस आदमी को नबुवत क्यों मिली, इसको तो नहीं मिलनी चाहिए थी, हमारे यहूद में मिलनी चाहिए थी। इस हसद में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से महरूम रह गए थे। और जमीनों आसमान में जो पहला गुनाह है ना, जानते हैं वो भी किस बात पे हुआ? हसद की वजह से। शैतान ने कहा था मैं इसको क्यों सजदा करूं, उसको इतना हसद हुआ कि इसको इज्जत दे दी गई है, इसको सजदा करवाया जा रहा है। फिर उसने कहा ये मट्टी से बना, मैं आग से। अब ये भी बड़ाई का एहसास क्यों आया? हसद की वजह से। फिर उसने कहा या अल्लाह ये कभी तेरा शुक्र गुजार नहीं होगा। यानी जब हसद आया तो कीना भी आ गया, बुग्ज भी आ गया, तकब्बुर भी आ गया, हसद ने कहां तक पहुंचा दिया। फिर इंसान जब हसद करता है ना, फिर उस बंदे की गीबत भी करता है, उस पर बोहतान भी लगाता है, उसको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो हसद उसको चैन नहीं लेने देता। फिर जहां वो मिलता है उसको कुछ ना कुछ सुनाने की भी कोशिश करता है। फिर इंसान उसके दूसरे के नुकसान पे खुश होता है, उसके मुतालिक बुरा सोचता है। यानी कितनी चीजें हैं जो इस हसद से जन्म ली। इसने अंडे दिए और इसके अंडे कितने हैं, सोचें जरा। हदीस में आता है पहली उम्मतों में ये मर्ज था, जो वो मर्ज तुम्हें भी आ गया, और वो है हसद। ये पहली उम्मतों का मर्ज था। और बुग्ज, ये जो कीना है ना, इल फीलिंग अबाउट समबडी, उसके बारे में, किसी के बारे में बुरी फीलिंग्स रखना। तो फरमाया ये तो मूड देने वाली चीज है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि ये बालों को मूड देता है, बल्कि ये दीन को मूड देता है। जैसे होता है ना शेव करना, जैसे आप उस तरह फेरते हैं बालों पर तो बाल मूड जाते हैं ना, एक एक बाल का सफाया हो जाता है। इसी तरह कीना नेकियों का सफाया कर देता है, और ये कीना हसद से पैदा होता है। हमने कीने की भी बात की थी ना, तो अगर कीने अभी तक रखे हुए हैं तो फिर नेकियों का तो मतलब उस तरह फिर रहा है फिर। तो जब इंसान में हसद पैदा हो जाता है वो तो आग उगलता है दूसरे के लिए। इसी तरह जो जमीन पे पहला गुनाह हुआ था वो भी क्या था, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, वो भी हसद की वजह से कि इसकी कुर्बानी क्यों कबूल हो गई। तो अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बादकुम अला बाद, तुम वो चीजों की तमन्ना ना करो जो अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पे अपना फजल किया, तुम वो चाहते हो कि उसकी तमन्ना करते हो। वसअलुल्लाह मिन फद्ली, तुम भी अल्लाह से मांग लो ना, उसको भी अल्लाह ने दिया तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ गए हो, वो तुम्हें भी दे सकता है। तो अब जब भी किसी की नेमत देखें तो अपनी हसद की आग से उसको बचाएं, ये भी मुसलमान की खैरख्वाही है, ये भी उसको नुकसान से बचाना है। हमने उस दिन बात की थी ना कि अपने शर से लोगों को बचाएं, ये भी एक सदका है, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। आप किसी साथ भलाई नहीं कर सकते ना, ठीक है ना करें, लेकिन किसी को अपने शर से तो महफूज करके, ये भी कभी सोचा आपने कि ये कितना बड़ा नेकी का मकाम होगा कि हम अपने हसद की आग से दूसरे को ना जलाएं। और ये तकवा है दिल का, और दिल का ये लीस्ट तकवा है कि दिल में हसद ना रहे। मगर प्रॉब्लम जानते हैं सबसे बड़ा क्या है, कि हम मानने को तैयार ही नहीं कि मेरे अंदर भी कोई हसद हो सकता है। कौन मानेगा कि मैं हसद में जल रही हूं, उसको भी हम खूबसूरत नाम दे देते हैं, नहीं नहीं मैं तो इसकी इसलाह करना चाहती हूं, उससे मुझे क्या पड़ा हुआ हसद करने का। तो सबसे पहले तो हम माने कि मुझे हसद हो चुका है इसलिए क्योंकि मेरे से उसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। मुझे कोई अच्छी खबर उसकी मिल जाए, उसकी तरक्की की बात पता चल जाए तो मेरे अंदर आग सी लग जाती है। मैं फेसबुक पे या कहीं उसके मुतल्लिक पढ़ती हूँ कि उसको मजीद कोई नेमत मिल गई है तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो समझ लेना यही तो हसद है, पहचाने इसको। और इसमें मुब्तला जब इंसान होता है तो वो किसी और से नहीं अल्लाह से मुकाबला कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो पहचाने और माने, तभी कोई चीज सही हो सकती ना। मानना ही नहीं तो फिर क्या सही हो सकता, जो कहे मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो इतनी अच्छी ही हूं, मैंने तो कभी किसी से हसद किया ही नहीं, तो इलाज किस चीज का बताएं। इलाज तो मैं तब बताऊं ना उनके लिए, इलाज तो जो समझते हैं और मान जाते हैं। और मान जाना भी बहुत बड़ी बहादुरी है कि इंसान मान जाए। देखिए आपने किसी और को नहीं बताना, आपने अपने अंदर तो कम से कम कन्फेस करें ना, अपने अंदर तो माने कि हाँ मुझे ऐसा होता है, मेरे अंदर ये फीलिंग्स होती हैं जब मैं ऐसी चीज सुनती हूं, मुझे अंदर ही अंदर कोई चीज चुभने लगती है। तो अगर ऐसे चीज को मैं पहचान गई हूं तो मुझे उसके इलाज में देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये ना हो कि मेरी नेकियां जल के राख हो जाएं और तब मुझे होश आए। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, अब ये इलाज मैं आप लोगों को बता रही हूं। जो लोग ये समझते हैं कि हाँ ठीक है मुझे इस बुराई से निजात पानी है, मैंने आपको बताया था ना कल अपने नफ्स पे काबू पाना है, इसको कुचलना है, तो ऑपोजिट करना होता है उसके लिए। जो नफ्स कह रहा है ना उससे उलट जाए, जिससे हसद है वो बुरा लगता है, आप उसकी तारीफें करना शुरू करें, जहां बैठे उसकी तारीफ करें। नफ्स हसद करना चाहेगा आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं, इससे नफ्स कुचला जाएगा, बाज आएगा, सीधा हो जाएगा। दूसरी चीज हम क्या करें, कनात करें उस पे जो आपके पास है। देखें जो भी हमें अल्लाह ताला ने दिया ना वो ही हमारे लिए बेहतर है। अक्सर हसद तब होता है ना जब इंसान में कनात नहीं होती कि वो उसको क्यों मिल गया, तो जो मेरे पास है वो अच्छा अच्छा ही दिया अल्लाह ने मुझे, उस जिस हाल में मुझे रखा है ना वो ही हाल मेरे लिए बेहतर था। तीसरी चीज जो मैंने अभी आपको बताई, अल्लाह से मांगे, जिसने उसको दिया है तो आपको भी दे सकता है, तो दूसरे की नेमत देखें तो कहें अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमा, खुश हूं इस बात के ऊपर कि इसको मिला है मुझे भी मिल सकता है, देना तो अल्लाह ने, इससे छीनेगा तब नहीं मुझे मिलेगा, मुझे अल्लाह देगा। चौथी बात यह कि इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मैं अपने हसद से अपने आप को बर्बाद कर रही हूं, अपना नुकसान कर रही हूं, मेरी नेकियां राख हो रही हैं, जो इतनी मेहनतें कर रही हूं मैं नमाज में, रोजे में, सदके में, ये सब जल जाएंगी और मैं इनमें से कुछ भी नहीं पा सकूंगी। जब इंसान को अपने नुकसान का पता चलता है ना तो फिर कोई भी नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो, मेरी मेहनत को आग लगे। तो ये जब जहन में आ जाएगा तो इंशाल्लाह आसानी होगी कि हम अपने आप को साफ सुथरा कर सकें। फिर अगली बात ये, तकदीर पे राजी हो जाए, जिसको नेमत मिली है वो उसकी तकदीर में लिखी हुई थी कि आप तकदीर से लड़ेंगे। क्या अल्लाह ताला फरमाता है हासिद जो है वो मेरी नेमत का दुश्मन है, मेरे फैसले से नाराज है और बंदों पर मेरी तकसीम से नाखुश है। किससे हमारा मुकाबला है? अल्लाहु अकबर, तकदीर में किसने लिखा उसके लिए? ये अल्लाह ने। फिर अगली बात यह है कि जो भी नेमत अल्लाह ताला देता है, आपको पता है ना उसके साथ आजमाइश होती है, तो अल्लाह ताला पता नहीं उसको इस नेमत को देकर किस तरह से आजमा रहा है। मुझे ये नेमत मिल जाती तो पता नहीं मैं कामयाब हो भी पाती या नहीं, और अल्लाह ने उसको इस आजमाइश में डाला है तो पता नहीं उसके लिए इसके अंदर क्या रखा है अल्लाह ताला ने, क्या वो पूरा हो भी सकेगा, आजमाइश में पूरा उतर भी सकेगा या नहीं, और कितने मसले और इस नेमत के साथ, और कितनी जगह से अल्लाह ताला उसको खींचता है फिर ये नेमत मिली है उसको, और कितनी और प्रॉब्लम्स में वो पड़ा हुआ। तो हर साहिब नेमत ना हसद किया जाता, तो ये भी सोचें कि इस नेमत के आने से कितने लोग इसके दुश्मन बन गए, हसद करने लगे, तो ये बेचारा नेमत पाके अपने लिए कितने मुखालिफ पैदा कर बैठा। और अगली पॉइंट ये है कि जब भी दिल में हसद आता है ना तो याद रखें ये इस बात का साइन है कि दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल में कूट कूट के भरी हुई है। इसलिए अगर ये ना होती ना तो मुझे परवाह भी ना होती किसी को क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो दुनिया धोखे का सामान है। हम समझते हैं अगर कि दुनिया हकीर सी पूंजी है, ये तो जल्द खत्म हो जाने वाली, आखिरत है हमेशा रहने वाली, तो हम क्यों हसद करेंगे किसी से? प्रॉब्लम ही तब होता है जब हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है और हमें ये हो जाता है अच्छा इसको ये मिल गया। तो ये जो हम दावे करते हैं ना कि नहीं मुझे तो मतलब कुछ नहीं है दुनिया से, ये दुनिया ऐसे ही हकीर और ये कोई इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए कि फिर अगर सारा दिल ही इसी दुनिया में लगा हुआ है तो किसी को चीज जो मिली है वो भी दुनिया की चीज है, उसने भी खत्म हो जाना है, ये तरक्कियां खत्म हो जाएंगी, ये नेमतें खत्म हो जाएंगी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो एक दारुल इम्तिहान है जहां पे इम्तिहान के लिए उसको एक नेमत दे दी गई, किसी को किसी तरह की नेमत दे दी गई। तो अगर दीन की समझ हो और अगर वाकई आखरत अहम हो ना तो ये दुनिया की चीजों से किसी पे हसद नहीं होगा। ये क्या चीजें हैं जिनके ऊपर, कितनी घटिया चीजें हैं, जितना भी किसी को यहाँ पे कुछ भी मिल जाए वो सब क्या है, अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो जो दीन को समझता है, जो इस दुनिया की हकीकत को पहचान जाता है ना, वो नहीं हसद करता, और जिस पे गालिब हो ये दुनिया तो बस फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता। फिर ये भी देखें कि अगर हम ये कहते ना नहीं मैं किसी की नेकी जो है उसके ऊपर असल में मुझे रश्क आ रहा है, तो रश्क जब आता है ना तो फिर इंसान चाहता है कि मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी ये खुश होता है इंसान के अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आगे जा रहा है नेकियों में, क्योंकि उसको अल्लाह से जब मोहब्बत होगी तो फिर दूसरे लोग जब अल्लाह की तरफ आएंगे तो अच्छा लगेगा कि शुक्र है और लोग भी अल्लाह की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर दिल में ये आता है ये क्यों इतना मकाम पा रही है अपनी नेकी की वजह से, ये बात नहीं बर्दाश्त हो रही, तो इसका मतलब है कि असल बात ये नहीं है कि हमें उसकी कोई नेकी की बड़ी परवाह है या कुछ, हमें असल में ये ख्वाहिश है कि इससे ये मकाम छिन जाए, हुब्बे जा है फिर जिसका हसद हो रहा है, वो नेकी देख के जब हम खुश नहीं हो रहे तो इसका मतलब है हमारे अंदर हुब्बे जा है। किसको नेकी से ये क्यों मकाम मिला? फिर आप एक बात और याद रखें, जितने इसके नुकसानात का आपको पता चलेगा उतना ही फायदा है। हदीस में आता है आदमी के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते। तो क्या मैं ये चाहती हूं कि मेरा दिल ईमान से खाली हो जाए? याद, क्योंकि हसद के आने से ना खुद ब खुद इंसान वो काम करने लगता है जो ईमान के ऑपोजिट है। तो मैं ये चाहती हूं कि ईमान जाए या हसद जाए, एक चीज रह सकती है दिल में, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। खुद ही फैसला कर लें कि किस चीज को रखना है और किसको निकालना है। फिर अगली बात ये है इलाज में कि हम ये समझ जाएं कि इससे मेरी जिंदगी अजीरन हो रही है। हसद की वजह से इंसान मुसलसल गम में रहता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है कि आए उसको भी ये मिल गया, उसको भी, उसने भी इतना बना लिया, आए उसको बेसकूनी रहती है। तो इस अपने आप को बेसकूनी में डालने का क्या फायदा? फिर दूसरे की नेमत देखकर कहा करें माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला तबारक अल्लाह, ताकि वो आपके शर से महफूज रहे। और ये भी याद रखें कि इसकी वजह से मैं कितने सारे और गुनाहों में मुब्तला हो गई हूं। बुग्ज है, गीबत है, नफरत है, तो क्या ये वर्थ है? ये उसको एक नेमत क्या मिल गई, मैं इतने सारे गुनाह अपने सर ले लूं और अपनी नेकियों को तो जला ही रही हूं। तो खुद को खुद समझाएं, जब ये जज्बात दिल में आए तो इन बातों को सोचें कि ये जहरीला सांप है जो मुझे बर्बाद कर देगा। इसका इलाज करना है, वरना ये आग है, आग को हवा देते रहेंगे ना तो ये फैलती जाएगी। कभी कभी हमें अपने जैसे और भी हासिद मिल जाते हैं, फिर हम उनके साथ बैठ के एक टीम बना लेते हैं और दूसरे के खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। तो इस आग को फैलाना नहीं है, इस पे ढक्कन लगाना है। दिल में बात आए तो खुद इसको डील करें। फिर जिससे हसद किया जाए वो क्या करें, ये भी तो अब एक बात है ना। अब जब किसी को ये शक हो जाता है कि मेरे से कोई हसद कर रहा है तो वो और गुस्से की आग में जलने लगता है। अब उसको ये हो जाता है कि मैं इससे इंतकाम लूंगी। अब जहां वो नजर आता है बस उसको जली कटी सुनाता है, उसको ताने देता है, उसको जलील करता है। वो इस तरह से वो अपना गुस्सा इनडायरेक्टली निकालता है। डायरेक्टली तो कह नहीं सकता कि तुम मेरे से हसद करते हो, तो किसी ना किसी दूसरे तरीके से करता है। और ये भी एक गलत चीज है जो नहीं करनी, ये तरीका नहीं है इसको डील करने का। आपको करना क्या है, अपनी नेमतों की सलामती के लिए हिफाजत की दुआएं पढ़ें। हम सब को सुबह शाम की दुआएं आनी चाहिए। ये दुआएं आपको कहीं पे भी, किसी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। इन दुआओं के कार्ड्स भी कहीं से मिल सकते हैं। सुबह की दुआओं का वक्त क्या है, फजर से इशराक के दरमियान, बस ये टाइम है। ये नहीं कि आप उसके 9 बजे पढ़ रहे हैं। और शाम की दुआओं का टाइम असर के बाद है। इससे आपकी नेमत की हिफाजत हो जाएगी। हासिद का हसद आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता। इसके बाद फिर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? जब वो मुझे नुकसान ही नहीं दे सकता, वो तो अपना ही बुरा कर रहा है, मुझे क्या इससे? तो ये दुआएं पढ़ लें, फिर मुतमईन हो जाएं कि अब कुछ नहीं होगा। फिर अपनी नेमतों का अगला पॉइंट है ये, अपनी नेमतों का बहुत ज्यादा इश्तिहार ना दिया करें। हर जगह नुमाइश करते फिर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कभी खुद बता बता के लोगों को, कभी इधर पिक्चर्स डाल रहे हैं, कभी इससे आप अपने लिए हासिद खुद पैदा करते हैं। तो नेमतों का कोशिश किया करें कि बहुत ज्यादा चर्चा ना करें। बाज लोग जहां बैठते हैं अपने बच्चों की तारीफ, अपने घर की तारीफ, अपने हस्बैंड की तारीफ, इससे बचें। और बार दफा तो सात समुंदर पार बैठे हुए लोग हसद करने लगते हैं इसलिए कि वो सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं। फिर बाद में हम देखें रोते हैं कि मेरी तो ये नेमत खत्म हो गई, मेरा तो बच्चा ऐसे था वैसे हो गया, मेरी तो ये कारोबार खत्म हो गया, मेरी तो जॉब में ऐसा मसला हो गया। इसलिए क्योंकि हम हिफाजत करने के लिए कोई तदबीर करते नहीं, खुद ही हम इश्तिहार देते हैं। ना हम वो दुआएं पढ़ते हैं, ना हम अपनी जुबान को कंट्रोल करते हैं। तो दूसरों को मौका ही ना दे के वो हसद करें। इसी तरह अगर तो आपके रिश्तेदार हैं तो जाहिर है आप एक थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं, मगर कता ताल्लुक ही नहीं कर सकते, बोलचाल बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोस्त अहबाब हैं तो थोड़ा सा, अगर आपको ये लग जाता है कि ये हसद करते हैं, यकीन हो गया, तो थोड़ा सा उनसे पीछे हटना शुरू कर दे। और जो हासिद है, जब जाहिर है बाज लोगों को आप नहीं छोड़ सकते, तो उनसे जब भी मिलें, उनको इज्जत दें, तोहफे तहाइफ दें, इससे हसद की आग को आप मजीद भड़कने से रोक सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन तदबीरों से इंसान अपनी खुद की थोड़ी बहुत जो भी ऐसी चीज अगर आपको शक होती है तो इंशाल्लाह ताला इससे आप महफूज रहेंगे। आज का जो जिक्र है इतना प्यारा जिक्र है, इसलिए कि ये वो जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराफा के दिन के बारे में फरमाया कि आराफा के दिन की दुआ बेहतरीन दुआ है, और उस दिन जो दुआ बेस्ट है ना वो ये दुआ है। तो इसमें दुआ भी है, इसमें जिक्र भी, और फरमाया ये अंबिया की भी दुआ थी। तो ये है क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे साथ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो जो दिन में 100 दफा ये कह लेगा ना, उसको इतना अजर है, 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा, 100 नेकियां लिखी जाएंगी उसके लिए। हमारे पास कहां इतनी नेकियां करने की इस्तात है, या 10 गुलाम एवरी डे हम आजाद करें, कहां इतनी इस्तात। आज तो गुलामी नहीं है, लेकिन अगर गुलाम की जगह आप समझ लें कि डोनेट करना है आपने कहीं, तो 10 गाड़ियां आपने डोनेट करनी है, तो कहां पॉसिबल है। फिर उस दिन और जिस दिन वो ये पढ़ेगा, उस दिन शैतान के शर से महफूज रहेगा, और कयामत के दिन इससे अफजल कोई अमल नहीं लेकर आएगा, मगर वो जिसने इससे ज्यादा दफा पढ़ लिया उसका ही अमल इससे ज्यादा हो सकता है, इस वरना इससे अफजल कोई अमल नहीं ला सकता, यानी इस कलमे का मुकाबला ही नहीं कोई और कलमा कर सकता। और आज की दुआ भी इसी तरह से है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूं किस चीज से, कि तेरी नेमतों के जवाल से, कि जो नेमतें तूने दी हैं उनको जवाल हो जाए, चाहे किसी के हसद की वजह से, चाहे मेरे अपने गुनाहों की वजह से, चाहे व तहव्वुली आफियतिक, और जो तूने आफियत दी है उसके बदल जाने से। अभी हम आफियत में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, एक लम्हा भी नहीं लगता इंसान से आफियत छिन सकती है। फुजाअति निकमतिक, और अल्लाह तेरी सजा के अचानक आ जाने से, कोई पकड़ आ जाए इंसान के ऊपर, कोई सजा आ जाए, अल्लाह अचानक इस सजा के आ जाने से मुझे महफूज रखना। वह जमी आसहा देख, और अल्लाह तेरी हर किस्म की नाराजगी से। तो ये बहुत ही प्यारी दुआ है, इस दुआ को जरूर मांगे, और इसमें बहुत सारी अहम चीजें आ जाती हैं जिनकी हम सबको जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे जिक्र करने को कबूल फरमाए, हम सब से हसद की ये बीमारी दूर फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।